फाउंडर क्या होता है इन्वेस्टर के? एक घोड़ा है। ये रेस में बंदा घोड़ा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा, या फिर इजी गोइंग टू बी अ घोड़ा वो टर्न्स इनटू अ गधा ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टर वही गेज करता रहता है। भाई इंडिया में कैपिटल रेज इज सेलिब्रेटेड, कंपनी ने फंडिंग उठा लिया वो सेलिब्रेटेड है। 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, माई गॉड कैपिटल उठा। लेकिन वो 1000 करोड़ उठा के 2000 करोड़ का लॉस चल रहा है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। कैन द फाउंडर स्टार्ट थिंकिंग टू ट्रीट इक्विटी लाइक डेट इन हिज माइंड एंड से ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसी और का है, मुझे धंधे के लिए यूज करना है, अपने बिजनेस क्लास के लिए नहीं यूज करना है, अपने प्राइवेट जेट के लिए नहीं यूज करना है, अपने BMW बाइक के लिए नहीं यूज करना है। व्हेन दैट स्टार्ट्स हैपनिंग द इकोसिस्टम विल जस्ट गेट बेटर एंड बेटर।
इन्वेस्टर्स कैसे फंसा सकते हैं किसी एंटरप्रेन्योर को? आज का स्टार्टअप है एक स्टार्टअप लॉयर के साथ, जो सिर्फ लॉयर ही नहीं एक फाउंडर है जिनकी लॉ फर्म इस पे काम करती है कि स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए वो लाइफ इजी कैसे बनाए। तो आज के पॉडकास्ट पे हमने बहुत सारी ऐसी बात करी है जो हर एक फाउंडर, हर एक बिजनेसमैन को इंडिया में ध्यान रखना चाहिए। इंडिया में फाउंडर्स को पैसा कैसे मिलता है, स्टार्टअप से पैसे लगाए कैसे जाते हैं, कैसे VC स्टार्टअप्स को फंसाते हैं या कैसे स्टार्टअप्स गलत तरीके से पैसा रेस कर लेते हैं, इन सब के बारे में हमने बात करी है। तो आज का एपिसोड सिर्फ उस हर एक इंसान के लिए नहीं है जिसको स्टार्टअप में इंटरेस्ट है, बट उन सब के लिए है जिनको जानना है कि इस कंट्री में इतना सारा पैसा कैसे कुछ कंपनीज को मिल रहा है और क्यों मिल रहा है और उसमें सही प्रैक्टिसेस क्या है और गलत प्रैक्टिसेस क्या है। सो वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड बिफोर यू स्टार्ट द एपिसोड जाके राजशमानी क्लिप्स और राजशमानी शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड को छोटे छोटे पीसेस में कट करके आपके सामने लाते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें कम समय में। एंजॉय द शो।
मैंने बॉम्बे में जब अपना कहानी शुरू किया था ना भाई, मेरा बॉम्बे का कहानी था चंदनवाड़ी में।
ओके,
चंदनवाड़ी जानता है? कभी गया है उस साइड में तू? सो चंदनवाड़ी एंड आई स्पीक इन अ लॉट ऑफ फोरम्स, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने अपना जर्नी वहाँ से शुरू किया जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपना जर्नी खत्म करते हैं।
मतलब
बिकॉज चंदनवाड़ी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट क्रिमेटोरियल ग्राउंड इन द सिटी। तो मैं रहता था मरीन लाइन्स में एक छोटे से फर्म में जहाँ पे मुझे 7000 रुपए का पगार से शुरू हुआ था। बॉम्बे का कहानी, उससे पहले मैं दिल्ली में काम करता था। तो करंट जर्नी अगर मैं इनिशियली ले लूँ एकदम 20-22 साल पहले, दिल्ली में 1500 रुपए से शुरू हुआ था। वहां से जाके मैं गुड़गांव गया, गुड़गांव में 3000 या 4000 रुपए का पगार था, हमेशा बॉम्बे आना था। मुंबई जब आया मैं, मुंबई में मेरे को सिर्फ एक मौका मिला, वो मौका मिला था उस टाइम पे मरीन लाइन्स में, पर किसी ने बोला नहीं था कि यार 6000 रुपए का जब टैक्स टुक्स काट के हाथ में तुम्हारा 4750 रुपए आएंगे। अब भाई साउथ बॉम्बे में तो चौल है नहीं,
कटेगा 7000 रुपए।
अरे वो 10 TDS कुछ काटता था उस टाइम पे, तो जो भी वो काट कुट के हमें देते थे वो लोग, ठीक है, तो हाथ में तो आता था अराउंड 5000 रुपीज। अब 5000 रुपए में साउथ बॉम्बे में भाई तुम चौल में पहुंच जाओगे। अब साउथ बॉम्बे में चौल नहीं है। तो साउथ बॉम्बे में मरीन लाइन्स के ऑपोजिट में एक जगह है चंदनवाड़ी बोल के, उसके आगे एक जगह है पारसी खाना बोल के, तो वहां पे ना डॉमेट्रीज होते थे। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी लिविंग इन अ डॉमेट्री। जैसा ये तेरा सुंदर सा एक ब्यूटिफुल स्टूडियो है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले और ये समझ ले कि 24 लौंडे गद्दे डाल के नीचे सोते थे और बाजू से इस साइज के चूहे निकलते थे। तो वहाँ से जब तुम जाते हो और बनाते हो, और वहाँ का लाइफ का पहला लर्निंग और जुगाड़ वहाँ से शुरू हुआ था कि वो 24 लोगों के साथ एक इंडियन संडास हुआ करता था। लाइफ का पहला जुगाड़ था उसमें 24 नंबर में मत जाना भाई, लग जाएगी। सो फ्रॉम देयर यू स्टार्ट योर फर्स्ट लेवल ऑफ हसल, द फर्स्ट लेवल ऑफ जुगाड़। यू स्टार्ट लर्निंग कि भाई दिस इज द बॉटम ऑफ द बैरल मोमेंट, ये तुम्हारा लोएस्ट है, पर तुम जब वेन यू टेक अ ईगल्स व्यू जिसे कहते हैं ना, फिर तुम्हें लगता है कि वो बॉटम ऑफ द बैरल काफी सारे लोगों के लिए, शायद ज्यादा ज्यादा प्रतिशत लोगों के लिए कई गुना बेहतर सिचुएशन है, बिकॉज दे कम फ्रॉम फार लोअर सिचुएशन, दे आर स्लीपिंग हंग्री, यू आर नॉट स्लीपिंग हंग्री, आप भूखे नहीं सो रहे हो, आपके ऊपर छत है। तो वहां पर जब आप रिकैलिब्रेट करते हो, आपको लगता है कि बॉटम ऑफ द बैरल से एक ही डायरेक्शन है भाई, अप। एक अजीब और गरीब जानवर उस टाइम पे निकला था, उस जानवर का नाम था फाउंडर, ठीक है।
वो आज भी फाउंडर दर बदर भटक रहा है,
आज भी दर बदर भटक रहा है। तो मैंने बोला यार मैं खुद फाउंडर हूं, खुद एंटरप्रेन्योर हूं, तो यार मुझे ना, मैंने देखा यार बेचारा जो चेक काटने वाला है, जो फंड है, जो इन्वेस्टर है, उसके पास तो 50 ऑप्शन है एडवाइजर्स का, वो बेचारा फाउंडर के पास ऑप्शन नहीं। क्या कोई इंडिया में बन सकता है ऐसा फर्म जो चीख चीख के बोले कि भाई वी आर फाउंडर फर्स्ट, एंड दैट वाज द सेकंड कॉन्ट्रेरियन।
तो फंड से काम नहीं करते?
20%, 80% इज फाउंडर्स। यू नेम द फाउंडर वर्थ हिज सॉल्ट, चांसेस एवरी थर्ड और फोर्थ फाउंडर वर्थ हिज और हर सॉल्ट विल बी आवर क्लाइंट्स एंड क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम आर वेरी डियर कॉमन फ्रेंड्स ऑफ आवर्स एज वेल. सो आई टुक दैट बेट. आज शार्क टैंक आप देख रहे हो, आज शार्क टैंक बहुत बड़ा बन गया, पर काफी सारे लोग जो उस स्टेचर पे है, आई नो देम जब वो शुरू किए थे, वहां से आज का जर्नी, आई बीन अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी. तो मेरे लिए वो खुशकिस्मती थी, आई प्रीएम्प्टेड एंटरप्रेन्योरशिप जो 7.5 साल पहले जब शुरू हो रहा था, सेलिब्रेट हो रहा था, आई स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम. एंड वो कॉल था भाई मेरा कि मैं फाउंडर्स के लिए ज्यादा काम करूंगा, बिकॉज शायद वो दर्द मुझे ज्यादा समझ में आता है, शायद वो जगदोजहद मुझे समझ में ज्यादा आता है, शायद वो पेन कि भाई करंट अकाउंट में पैसे है नहीं और हम कल के रेट पे सैलरी देंगे, पता नहीं कहां से देंगे, वो जो टर्मोइल है वो मुझे ज्यादा समझ में आता है. सो वहां से हमने शुरू किया भाई. एंड जब शुरू किए थे 4 लोग थे 450 square feet ऑफिस में, और आज भाई हो गए अबाउट 80 people, 80 लोग हो गए, 3 ऑफिस हो गया, 450 वाला 7,000 square feet हो गया बम्बई में, गुड़गांव में, बॉम्बे में अराउंड 40 ऑफ अस, गुड़गांव में 20 और बैंगलोर में 20. सो दैट्स हाउ इट्स ग्रोन एंड गॉड्स बीन काइंड. मतलब भगवान के भरोसे और भगवान के दया से फाउंडर्स ये बोलते हैं कि यार जब तुम्हें चाहिए एक फर्म जो फाउंडर के लिए खड़ा हो, गो टू वर्टिसेस, जब एक बंदा चाहिए जो फाउंडर के लिए गोली खा सकता है, गो टू विनायक. सो ऐसे हमने बना दिया और बन रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है.
मान लो कि 2 founders हैं, दोनों के बिजनेसेस अभी एट दिस पॉइंट लॉस मेकिंग है, दोनों के स्टार्टअप्स में पैसे बनेंगे 5 साल बाद, ठीक है, और 5 साल तक चलाने के लिए दोनों को 100-100 करोड़ रुपए चाहिए. एक फाउंडर को पैसे मिलते हैं और दूसरे को नहीं मिलते, ऐसा क्यों होता है, क्या डिफरेंस होता है, आपको क्या लगता है कि जब बिजनेसेस दोनों ऑलमोस्ट मान लो सेम पोटेंशियल है, ऑलमोस्ट मान लो 100 करोड़ देने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि देखो रियलिटी इज एज मच एज कोई कितना भी बोल दे, राइट, प्रेडिक्ट कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, आप बोल दो कि ये बहुत बड़ा टैम है, ये वो है, ये ऐसा है, इसकी टीम बढ़िया है, इंसान बढ़िया, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. Correct. आप एट द एंड ऑफ द डे आपको बस अर्ली 3-4 साइंस पे आपका गट फीलिंग और डेटा के साथ आपको थोड़ा बैक करना पड़ेगा इन अ होप कि मेरा वाला बेट दूसरे से बेटर चल जाए. दैट्स द रियलिटी, राइट, द पॉइंट,
बिल्कुल सही है.
तो अब जब दोनों की गारंटी नहीं है तो फिर क्या होता है, क्यों ऐसे हैं कि कुछ लोग ज्यादा चल जाते हैं एंड क्यों है कि कुछ लोगों का नहीं मिल पाता.
ब्यूटीफुल क्वेश्चन,
ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट मान लो दोनों के पास डिग्रीज नहीं है.
बहुत बहुत उमदा क्वेश्चन है. इसको इसके 2-3 कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से, थोड़ा फिस में भी ग्रैन्यूलर जाएंगे, है ना. एक अपन सोचते हैं कि भाई जो बिजनेस है, बिजनेस भी टॉपिकल होता है इस स्टेज में. स्टार्टअप बिजनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट भाई टॉपिकल होता है, पुराने बिजनेस के हिसाब से नहीं होता. नाउ यू हैव द बेनिफिट ऑफ सीइंग ओल्ड स्कूल बिजनेस एंड न्यू एज बिजनेस, है ना. ओल्ड स्कूल बिजनेस क्या होता है कि भाई ये धंधा है, एक्चुअल धंधा है, यहाँ पे हम माल बेच रहे, पैसे आ रहे, हमें पता है प्रॉफिटेबल है. हाँ, वो मल्टीपल स्केल वो सब फलाने ढिमकाने नहीं होने वाले, बट इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस. दूसरा बिजनेस जो है, यू आर बिल्डिंग फॉर स्केल, फॉर रीचिंग समवेयर, फॉर अ सर्टन साइज, मार्केट साइज जो आपको करना है, तो वो टॉपिकल भी हो जाता है. टॉपिकल जब हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है भाई, टॉपिकल मतलब उस माहौल में, उस सिचुएशन में कौन सा चीज चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है. अब आप एग्जाम्पल ले लो कोविड. जब कोविड आके गया, वाई डिड एडटेक बिकम द फ्लेवर ऑफ द सीजन? बिकॉज सबको लगा उस टाइम पे कि भाई अब तो फिजिकल क्लासेस का कोई वैल्यू ही नहीं है,
सब ऑनलाइन
पढ़, अब सब ऑनलाइन होगा, तो फ्लेवर ऑफ द सीजन हो गया. इसलिए आपने देखा इतने एडटेक कंपनीज आए, ताबड़तोड़ पैसे रेज हुए, बट ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत कमाल के चीजें बनाए, बट दे बाउंस्ड ऑन द होल थॉट प्रोसेस कि यार इट इज टॉपिकल. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग इज, उस सिचुएशन में दोनों में से उस बंदे को जिसको पैसे मिले, वॉज ही डूइंग अ बिजनेस जो उस टाइम उस माहौल में हैड टेलविंस एज अगेंस्ट हेडविंस. मतलब टेलविंस और हेडविंस का डिफरेंस क्या कि भाई उसके पास वो माहौल पुश कर रहा था कि ये धंधा मार्केट में चाहिए लोगों को, ये धंधा मार्केट में बिकेगा, ये धंधा मार्केट में फोमो क्रिएट कर लिया है, तो इन्वेस्टर को भी फोमो हो गया, अरे यार ये तो चीज अब नेक्स्ट चलेगा, अपन इस पे इन्वेस्ट करते, ये मौका है नेक्स्ट हमारा किसी और को किसी और तरीके से बेच के निकलने के लिए. या फिर आपके पास वो धंधा था जो टॉपिकल था ही नहीं, जेनेरिक था, आपको लगा था बहुत आगे जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉपिकल बीट. सो एक टॉपिकल हो सकता है उस टाइम पे, माहौल क्या हो सकता है. दूसरा भाई, When you look at a situation of one versus another, discoverability बोल के एक चीज है. अब आप सोचो कि आप इन्वेस्टर हो, आपके पास एक सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास 3-4 ऐसे एग्जांपल्स आए जिसमें से एक बंदा आपको बहुत पसंद आया, आपने अपना रिसर्च कर लिया, फॉर सम रीजन वो दूसरा बंदे का आपके पास आया ही नहीं, अब डिस्कवरेबिलिटी में आपके पास आ गया, आपने उसमें पैसे डाल दिए। जब तक ये बंदा डिस्कवर हुआ, इस बंदे के पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया। कभी ना कभी डिस्कवरेबिलिटी जो होता है उस पे जब कैपिटल आ जाता है, दूसरे बंदे के लिए एंट्री लेवल बैरियर बन जाता है, तो देन द इन्वेस्टर एट इंस्टीट्यूशनल लेवल से नहीं यार, आई वुड बेट समवन हु हैज द लॉन्गर रनवे, आई वुड बेट विद समवन जिसके पास ऑलरेडी कैपिटल है, जिसके पास ऑलरेडी डिस्कवरेबिलिटी। थर्ड विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग बात नहीं करते भाई, इज द डिफरेंस बिटवीन द फाउंडर माइंडसेट। अब ये फाउंडर माइंडसेट क्या है? बहुत कुछ हो सकता है। जिस बंदे को पैसे मिले, वॉज ही मोर रेजिलियंट देन द बंदन जिसको नहीं मिला? वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ को फाउंडर वर्सेज सोलो फाउंडर? वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ पर्सन सीइंग कि ये फाइट मार के कुछ भी कर लेगा, लेकिन इसमें शायद वो मोटिवेशन नहीं था, या फिर शायद इसमें थोड़ा सा डिली डैलिंग था, इसको देख के लगा था कि शायद ये पूरा चीज मैनेज कर पाएगा, इसका टीम स्ट्रक्चर अच्छा है, इसका एसओपीज अच्छा है, इसके एसओपीज कहीं भी नहीं है। सो फाउंडर माइंडसेट इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल थिंग्स एंड वी कैन गो मच मोर इनटू डेप्थ इन फाउंडर माइंडसेट, बट फाउंडर माइंडसेट में बहुत सारे चीजें आते हैं विच टेस्ट एंड शोज एन इन्वेस्टर कि ये फाउंडर क्या होता है, इन्वेस्टर के एक घोड़ा है, ये रेस में बंदा घोड़ा आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता जाएगा, या फिर इज ही गोइंग टू बी अ घोड़ा हु टर्न्स इनटू अ गधा ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन्वेस्टर वही गेज करता रहता है, एंड देन माइंडसेट क्रिएट्स द डिफरेंशिएटर। तो फॉर दैट रीजन, इवन दो टू पीपल कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म, एकदम सेम बैकग्राउंड से, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स के वजह से एक बंदा दूसरे के आगे जा सकता है। इसमें लास्ट एग्जांपल जो लोग बात नहीं करते हैं राज, आई पर्सनली बिलीव अ लॉट इन इट, इज ऑल्सो लक। बींग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट बिजनेस एट द राइट टाइम, नोइंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो जो किस्मत है ना, किस्मत भी बहुत बड़ा खेल खेलता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन के वजह से वन पर्सन माइट गो अहेड ऑफ द अदर, इवन दो दोनों का शुरुआत सेम था, कैलिब्रेटेड प्लेटफॉर्म सेम था।
एक और चीज है इसमें मुझे पूछना है, मुझे बताओ ट्रू है कि नहीं है,
बताओ।
फोमो। तो डू यू थिंक कि अगर फाउंडर स्मार्ट हैं, या मान लो आपने बात करी नॉर्मल फाउंडर भी है, वो आपका घोड़ा नहीं है जो तेज रेस में भागेगा, लेकिन उसके पास 4-5 ऐसे लोग हैं, मे बी लॉयर्स, मे बी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मे बी सीएस, मे बी आउटसाइड के कंसल्टेंट्स, मे बी जो फंड रेज में हेल्प करते हैं, या एल्यूमिनाई नेटवर्क, या कोई एंजल, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? ये नेटवर्क्स होते हैं अलग अलग। अगर उसके बाद वो लोग हैं, डू यू थिंक कि वो लोग इतना उसको हेल्प करके फोमो क्रिएट कर सकते हैं? लेट्स स्टिक टू लॉयर्स, लेट्स से बिकॉज यू आर वन,
कि वो नॉन लॉयर
एंटरप्रेन्योर फ्रेंड एडवाइजर, राइट? डू यू थिंक कि वो उसकी हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं कि उसके आसपास उसको वो हॉटशॉट बना दें, एंड देन इज एबल टू सिक्योर एटलीस्ट 2-3 राउंड्स, एंड देन उसके आसपास बिजनेस बोलेगा एक टाइम बाद, बट तब तक के लिए 2-3 राउंड उसका वो करवा दे। क्योंकि आई रिमेंबर ये पहले होता था आईपीओ के टाइम पे, कि सीएज और बिग फर्म्स इतना माहौल बना देती थी कि पूरा इंडिया खरीद लेता था, बेकार कंपनीज भी, राइट? तो डू यू थिंक दिस स्टेज ट्रू इवन विद द लार्ज फंड्स?
50-50। सो आई एम गोना गो अ लिटिल मोर ग्रैनुलर। इफ यू हैव टू कंपेयर विद ओल्ड स्कूल कैपिटल मार्केट्स, पहले के जमाने में, यार पहले के जमाने में इन्फॉर्मेशन भी उतना नहीं था। अ लॉट ऑफ डिपेंडेंसी वॉज ऑन L1 बैंकिंग, मर्चेंट बैंकर क्या बोलता है, किस हिसाब से पैकेज किया जाता है, कुछ भी अगर आप तरीके से पैकेज करो शायद बिक जाता था एक टाइम पे। आज वो ऐसा माहौल नहीं है। टूडे कंज्यूमर, रिटेल, पीपल, यू, आई, एवरीवन इज फार मोर एडवांस्ड इन देयर इंफॉर्मेशन, उनका नॉलेज, उनका अंडरस्टैंडिंग। आज का इंडिया बहुत अलग इंडिया है। एट योर एज आई वुड हैव बीन नॉट हाफ एज क्लियर एज वॉट यू आर इन योर माइंड। एटलीस्ट आज के डेट पे इंफॉर्मेशन इज देयर टू अंडरस्टैंड वॉट इज राइट, वॉट इज रॉन्ग, टू गेट गेज, इवन इफ नॉट अंडरस्टैंड टू गेज, और वो गेज करके आप 5 लोगों के साथ जाके बात कर सकते हो भाई ये सही है कि गलत है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखो फोमो अल्टीमेटली फॉर सीजनड इन्वेस्टर्स बिजनेस मैटर्स, दे विल लुक थ्रू द फोमो, बिकॉज देयर फोमो इज नॉट अबाउट द पैकेजिंग, बिकॉज देयर फोमो हैज टू बी कि भाई कल के डेट पे ये 7 साल चलेगा कि नहीं, जाके एक लेवल में मुझे एग्जिट दे पाएगा कि नहीं। इंडिया में एंड दिस इंडस्ट्री ऑफ कैपिटल रेजिंग इज वेरी यंग, 15 साल पुराना है सिर्फ इंडिया में। आई बीन डूइंग दिस फॉर 20 years, 15 years पुराना है ये, वेन आइडेंटिफाइड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल रेज आया था। भाई इंडिया में कैपिटल रेज इज सेलिब्रेटेड, कंपनी ने फंडिंग उठा लिया वो सेलिब्रेटेड है, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, माई गॉड कैपिटल उठा ली। लेकिन वो 1000 करोड़ उठा के 2000 करोड़ का लॉस चल रहा है, नोबडी स्टॉकिंग अबाउट दैट। नोबडी स्टॉकिंग की भाई एग्जिट कितना दिया आपने, कितने लोगों को कितना मल्टीपल पे एग्जिट गया, वेज एग्जिट इज वॉट शुड बी ट्रूली सेलिब्रेटेड। बट इंडिया अभी थोड़ा अलग हो गया, ग्लैमर क्वेश्चन इज ग्रेट, पी आर क्वेश्चन इज ग्रेट विद फाउंडर्स हु हैव सेलिब्रेटेड बिकॉज दे हैव रेस्ड कैपिटल। सो टू योर क्वेश्चन, डज फैसिलिटेटर्स, आई विल यूज द टर्म, आपने जो जिनके भी नाम लिया, लॉयर बोलो, एडवाइजर बोलो, मेंटर बोलो, सीए बोलो, टैक्स वाले बोलो, ये सारे फैसिलिटेटर्स हैं आपके। फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, वो आपको बेटर तैयार कर सकते हैं, आपका माइंडसेट बेटर तैयार कर सकते हैं, आपको एक तरीके से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि यस आपके एसओपीज जगह पे है, आपका नॉलेज जगह पे, आपका तरीका सोचना का जगह पे है, आपके तरीके किस हिसाब से सिचुएशन को डील करोगे इस तरीके पे, बट वो आपके धंधा को आपके लिए नहीं बना सकता। बिजनेस हैज टू बी योर बिजनेस। सो फॉर द इन्वेस्टर इज दैट द कोर रीजन टू मेक अ डिसीजन, आंसर इज नो, बट विल दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, आपके लिए एक स्प्रिंग बोर्ड बनेगा क्या टू से दैट अ गाय, एक इन्वेस्टर के पास ऐसे दो ऑप्शन है, एक बंदा जिसके पास कोई नहीं है पूरा कच्चा है, और एक बंदा जिसके पास सब कुछ है लेकिन दोनों का धंधा सिमिलर है, तब चांसेस है कि इसके पास ज्यादा चांस है। लेकिन अगर ये पूरा कच्चा है लेकिन इसका धंधा फिर भी अच्छा है, और इसके पास पूरा आर्मी ऑफ सो कॉल्ड फैसिलिटेटर्स है लेकिन धंधा जीरो है, चांसेस आर स्मार्ट इन्वेस्टर विल गो इन टू दैट, बिकॉज फोमो एट द एंड ऑफ द डे इज ओवर रेटेड भाई। फोमो आप जिस हिसाब से भी करो, दोनों तरफ से फोमो होता है। आई कीप सेइंग दिस, इतने डील्स जो हम करते हैं, डील मेकिंग इज ऑल्सो फोमो, इट्स अबाउट फोमो मैनेजमेंट। फाउंडर का फोमो ज्यादा है या इन्वेस्टर का फोमो ज्यादा है? फाउंडर का फोमो ज्यादा होगा, वो ज्यादा टर्म्स मान लेगा, इन्वेस्टर का फोमो ज्यादा है, वो ज्यादा काइंड बन जाएगा। सो इट्स अबाउट फोमो मैनेजमेंट, द एडवाइजर्स कैन हेल्प इन फोमो मैनेजमेंट, बट दे कैनॉट गेट द डील डन अनलेस द बिजनेस इज सॉलिड। कि आप धंधा बनाने पे फोकस करो, धंधा बनाने के कहानी पे फोकस मत करो। जितना आप कहानी में फोकस करोगे ओवर अ पॉइंट वो धंधा बंद हो जाएगा, लेकिन जितना आप धंधे पे फोकस करोगे धंधा ही कहानी बन जाएगा।
बट देयर आर सो मेनी बिजनेसेस नाउ दैट आई, मतलब वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स सिंस चाइल्डहुड इज कि वेयर डू पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम एंड मनी। मैं काफी ऑब्जर्व करता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ सुपरमार्केट्स में जाके, रास्ते में लोगों से बात करता हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बात करता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है लोगों से बात करने में। बहुत सारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज मैंने बना रखी, उनमें हूँ कि लोग अपना टाइम और पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हैं, दैट वॉज बीन अ हॉबी। एंड नाउ उसके अलावा अब जो सेकेंड हॉबी पिछले लास्ट 2.5 साल में बिकॉज ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड द मिशन कि हमें बहुत लीडर्स और बनाने हैं, हमें एक बेटर लीडर बनना है, इंडिया में कुछ काम करना है, इन सब की वजह से एक मैं बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट कर दी कि मैं बहुत सारे बिजनेसेस के सक्सेस पैटर्न समझने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एंड आई आइडेंटिफाइड कि इक्वली, ओके, एंड यू वुड अग्री टू दिस एंड लॉट ऑफ पीपल वुड अग्री टू दिस, देर आर इतने सारे बिजनेसेस हैं जो 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ खर्चा करते गए करते गए करते गए, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करी, ग्रो ग्रो ग्रो, वो मार्केट में इतने बड़े बन गए और उसके बाद उनका बिजनेस बनना स्टार्ट हुआ। मतलब डे वन से अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो वो अप्रोच वैसी लेनी पड़ेगी, बट फिर आप डे वन से क्लियर लो, दोनों जगह डैबल नहीं होना चाहिए।
एब्सोल्यूट, कि आप दो पैर पे नाव रखे नहीं चल सकते।
हाँ, मैं दो नाव पे पैर रखे,
दो नाव पे पैर रखे आप नहीं चल सकते। यू हैव टू हैव, आपका जो थॉट है ना, लाइक यू ब्यूटीफुली सेड, यू हैव टू बी क्लियर कि एंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या।
एग्जैक्टली, मतलब आई हैव सीन इनफैक्ट बड़े से बड़ी कंपनीज भी, लोग बात करते हैं कि टाटा कितना प्रॉफिटेबल है, टाटा ने जूडियो जो बनाया, सब बात करते हैं, राइट, जूडियो जूडियो जूडियो, डे वन पे नहीं था प्रॉफिटेबल, बहुत इन्वेस्टमेंट डाली।
Correct.
अब वो इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस नहीं, कैपेक्स बोलते हैं।
करेक्ट,
हर किसी का अपना अपना तरीका है। हम छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो कैपेक्स भी एक्सपेंडिचर ही होता है, पैसे। एक्स इज एक्स, कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, की मतलब अगर आप एक दुकान खोलते हो बड़ी सी और दुकान में पैसा लगाते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज उनको मानती है कि वो एसेट है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खर्चा नहीं है।
Correct.
कि दुकान खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए लग गए तो, राइट, अब 100 करोड़ भी तो लगाते ही है।
बिल्कुल।
सो टाटा जैसी कंपनीज भी सालों साल तक ये करती है, यूनिचार्म जैसी कंपनीज बाहर से आती है जो मैमी पोको पैंस इंडिया की नंबर वन बन गई, दैट्स अ कंज्यूमर बिजनेस जिसमें लोग बोलते हैं डे वन से प्रॉफिटेबल हो सकते हो, 6 साल तक पैसे लगाती है।
केलॉग्स का स्टोरी ले लो,
केलॉग्स 10-12 साल तक सिर्फ फ्री में उन्होंने कॉन्फ्लिक्स खिलाए स्कूलों में, खर्चा करते गए। एंड रिलायंस की आप बात करते हो, राइट, जियो इज अनदर एग्जांपल की बहुत स्टार्टिंग में पैसे लगाओ। तो ऐसा कोई राइट और रॉन्ग नहीं है, टेलीकॉम हो या टेक हो, कंज्यूमर हो, डे टू डे बिजनेस हो, सब में डे वन से आप प्रॉफिटेबल भी रह सकते हो और आप बिजनेस बहुत बड़ा बना सकते हो, और डे वन से लेके 10 साल तक आप प्रॉफिटेबल ना रह के खतरनाक पैसा लगा एक्सपैंड करके भी आप बहुत बड़ा आउटकम निकाल सकते हो। इट्स जस्ट आपको कौन सा तरीका आता है, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सा तरीका बेटर तरीके से कर सकते हो, उस पर क्लियर रहो, दोनों में बनते हैं।
आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर परस्पेक्टिव ऑफ दिस। आपने जितने भी नाम लिए, राइट, वेदर इट्स केलॉग्स, वेदर इट इज यू नो टाटास, वेदर इट्स आदित्य बिरला, अ लॉट ऑफ न्यू एज बिजनेसेस दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय, इफ यू सी द अबिलिटी टू इन्वेस्ट constantly in a new age business which is not profitable on day one is also because ki unke paas profitable businesses itne sare the.
Agreed.
The comparative analogy jo aapko thoda sa alag analogy dekhna hai ki ye sare jo hai bahut bade business houses the jo aaj experiment kar rahe and therefore they can afford to pump their own money to make their so called startup business thrive.
True.
Ab probability ratio mein jao, ek anokha young banda खुद का एक धंधा शुरू कर रहा है, उसके पास ऐसा लेवल ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल नहीं है,
बट तभी तो वीसीज एग्जिस्ट।
करेक्ट। नाउ व्हाट इज डिफरेंस विद द वीसी मनी, देयर इज एक्सटर्नल कैपिटल कमिंग इन विद द प्रेशर दैट इज कमिंग विद योर ओन कैपिटल कमिंग फ्रॉम योर ओन पेरेंट, प्रेशर्स आर मच लेसर। सो व्हाट आई वांट टू आउटलाइन हियर फॉर योर ऑडियंस इज कि ये माइंडसेट को भी आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। यू कांट हैव द सेम माइंडसेट थिंकिंग कि एक्सटर्नल पैसा लेके मैं एक टाटा का सब्सिडियरी की तरह चलूंगा, बिकॉज यहां पे प्रेशर ऑन रिटर्न, प्रेशर ऑन एग्जिट, प्रेशर ऑन परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी फार हायर।
बट दैट्स द मतलब आई फील कि ये प्राइस तुम पे करते हो, तुम अगर प्रिविलेज से नहीं आते हो तो
एब्सोल्युटली
तो देना ही है।
एब्सोल्युटली।
तो या तो तुम ये डिसाइड करो कि यार मैं हमेशा एक छोटे कुएं में छोटा मेंढक ही रहूंगा और ऐसे ही रहूंगा और मैं कभी जंप मारने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरे को आराम बड़ी जिंदगी चाहिए। या तुम्हें लगता है कि यार मेरे सपने बड़े हैं, मुझे तो इस कुएं से बाहर जाना है, दुनिया देखनी है, बहुत बड़ा करना है, ठीक है, और तुम प्रिविलेज भी नहीं हो ना, तुम्हारे पास टाटा बिरला सी बैकिंग है, तो अगर कोई बाहर वाला तुम्हें पैसे दे रहा है और वो बोल रहा है कि भाई 10 साल की जगह 3 साल में होना चाहिए, तो तुम्हें
रेडी होना चाहिए। दूसरा तुम्हें उस आग से सींच के कुंदन बनने के लिए भी रेडी होना चाहिए।
मतलब यू शुड बी रेडी कि मैं ये प्रेशर पे ऐसी जिंदगी में ऐसे हासिल करके रह सकता हूँ, बट वो तो प्राइस तुम्हें पे कर। अगर तुम चाह रहे हो कि किसी इंसान ने, ठीक है, 100 साल लगा दिए या 40 साल लगा दिए और फिर वो 1000 करोड़ का बिजनेस बना रहा है नया, और तुम चाह रहे हो कि 10 साल में तुम कर दो एक ही जिंदगी में, तुम्हारे बाप दादा ने कुछ नहीं किया, तो वो तो प्राइस पे करना पड़ेगा।
एब्सोल्युटली।
एंड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग,
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट।
इट्स जस्ट It's a price of ambition that people
It's have a to price
pay.
of ambition and also the price at the end of the day in terms of building something on your own. See, startup kis cheez ke liye lad raha hai against the big boys? You're fighting with lesser resources, lesser capital, lesser time. Ye teen jo main cheez hai ek dhanda banane ke liye aapke paas nahi hai.
Yep.
So the only way you can disrupt is when you have that mindset. That's why I say founder mindset is everything. Dekho, capital to fir bhi aa jayega. और हमारे पास बहुत कहानियां जहां पे कैपिटल बहुत आए लेकिन धंधा खत्म हो गया।
यप।
बट इकोसिस्टम को बचा के रखने के लिए यू हैव टू हैव मोर पॉजिटिव स्टोरीज देन नेगेटिव स्टोरीज। इंडिया इज जस्ट इवॉल्विंग आज।
यप।
अभी तो शुरू हुआ है भाई, अगले 20 साल में तुम देखो इंडिया कहां तक कहां जाए। बट फॉर इंडिया टू रीच देयर द पॉजिटिव स्टोरीज हैव टू बी सेलिब्रेटेड, वो विच मींस वो फाउंडर माइंडसेट आना चाहिए। एंड आई कीप सेइंग दिस भाई, अब आप एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले लो। आप बैंक से लोन लेते हो, probability ratio of that loan का default generally low होता है या high होता है? Low होता है।
बहुत।
क्यों? कभी सोचा आपने क्यों? क्योंकि उस loan के against कुछ ना कुछ collateral जुड़ा हुआ है। तो आपकी फटती है यार, घर चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, बाइक चली जाएगी, बिकॉज एक collateral है। आपका माइंडसेट में है क्या, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ हसल लगा के वो EMI तो दे दूं मैं। इक्विटी में डिफॉल्ट रेट ज्यादा क्यों हो रहा है? कोई कोलैटरल नहीं, इट्स अ बिजनेस रिस्क। एंड यू आर टेकिंग दैट बिजनेस रिस्क एंड इन्वेस्टर्स टेकिंग दैट बिजनेस रिस्क। बट व्हाट इज द माइंड शिफ्ट? कैन द फाउंडर स्टार्ट थिंकिंग टू ट्रीट इक्विटी लाइक डेट इन हिज माइंड? इफ यू कैन कंपार्टमेंट हिज माइंड एंड से ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा किसी और का है, मुझे धंधे के लिए यूज करना है, अपने बिजनेस क्लास के लिए नहीं यूज करना है, अपने प्राइवेट जेट के लिए नहीं यूज करना है, अपने BMW बाइक के लिए नहीं यूज करना है। When that starts happening, the ecosystem will just get better and better.
Yeah, yeah. That's true. That's the truth of the matter.
That is the truth of the matter.
Because I tell you, par na, I think hamara ecosystem bhi, I can say this because na, like I don't want to sound any vice or anything ki bhai main koi mere ko bahut samajhta hai ya kuch nahi, but main bhi bachcha hu, naive hu, I'm trying to understand something. I'll tell you very clear, kyunki maine business kiya hai and do teen baar main fail hua hu aur do teen baar banaya hai, mere liye I treat equity also as liability.
Correct.
Kyunki mere liye liability more than collateral is time. और ये यूजुअली आप देखोगे तो बाहर जहाँ पे मैच्योर इकोसिस्टम है वहाँ पे लोग यूज करते हैं, यहाँ पे इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, राइट? बट दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट वी आर लूजिंग एज यंग पीपल, कि अगर मैं एक बिजनेस में जा रहा हूँ और तीन साल में पैसे खर्चा कर रहा हूँ और किसी इन्वेस्टर के साथ लगा रहा हूँ, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं बनता है, तो टाइम मेरा सबसे बड़ा कोलैटरल है, ये सबसे बड़ा लूज कर रहा हूँ मैं, बाकी सब आ जाएगा, ये नहीं आने वाले मेरे पाँच साल, क्योंकि कितना भी कर लूँ मैं, इलॉन मस्क का भी अगर मुझमें पोटेंशियल हो तो अगर मैं 40 के बाद स्टार्ट करूंगा तो मेरा कम छोटा इलॉन मस्क बनेगा, वर्सेस 25 में स्टार्ट करूंगा तो मैं बड़ा इलॉन मस्क बनेगा.
करेक्ट.
सो दैट्स द आई थिंक टाइम इज ऑल्सो कोलैटरल दैट यू डू एट अ वेरी यंग एज. तुमको बहुत सारे चीज होती
है, बट ऑल्सो दिस इज अ मैटर ऑफ बैकग्राउंड. योर बैकग्राउंड गिव यू दैट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू हैड एक्सपोजर. लॉट ऑफ यंग पीपल डोंट हैव दैट बैकग्राउंड एंड एक्सपोजर. उनको लगता है कि यार एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट ग्लैमर. Entrepreneurship is about, you know, creating that FOMO, about that PR. यार मेरा तस्वीर आ गया, मैं इसके 40 under 40, 30 under 30, 25 under 25, पता नहीं कितने सारे ये सारे unders आ गए, सब में मैं feature हो रहा हूँ. Very few people have the maturity because when you come from a background to see hardship and then success in a business, you realize the value of various things, currency of trust, currency of time, currency of growth. ये तीनों चीज को मैटर
करता है. सो लेट्स पिक अप ऑन फ्यू ऑफ द पीपल, दोस आर इंटरेस्टिंग पीपल आई वर्क्ड विद. फिजिक्स वाला
अलग है, प्रतीक
रेज. फिजिक्स वाला की क्या ऐसी खासियत है वो एकदम से रेज क्यों बने? क्योंकि आई टेल यू व्हाट वाज रियली सरप्राइजिंग, आई थिंक सबको सरप्राइजिंग लगा था, शायद प्रॉफिट था उनका 2-3 करोड़ रुपए उस टाइम पे, राइट? और उन्होंने रेज करा अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 8,000 करोड़. तो क्या था ऐसा उनमें कि 8,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिली उन्हें और शायद 1,000 करोड़ रेस करे, 900 करोड़ रेस करे, समथिंग लाइक दैट.
पहले राउंड की बात करें, उसके बाद तो काफी कुछ हो गया.
हाँ, मतलब पहले राउंड पे जहाँ पे उन्होंने एकदम अनाउंस किया कि हम $1 billion कंपनी है, डे वन पे उन्होंने जब पैसा रेस किया तब 900 करोड़ या 1,000 करोड़ उन्होंने पैसा उठाया और बोला कि हम 8,000 करोड़ की कंपनी है, थोड़ा सा डाइल्यूट किया जो कि फाउंडर और इन्वेस्टर मैट्रिक से बहुत कम था, मार्केट मैट्रिक से बहुत कम था, प्रॉफिट्स बहुत कम थे, रेवेन्यूज बहुत कम थे, फिर भी इतना बड़ा किया. डेफिनेटली उनकी लॉयल्टी, फैंडम, गुडविल, वो सब प्ले करते हैं. बट व्हाट डू यू फील कि उनमें अलग क्या था जिसकी वजह से फिजिक्स वाला एकदम से ऐसा डिफरेंशिएटर क्या था कि वो आउटलायर बन गया इंडिया में?
एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया, यू स्टार्टेड बाय सेइंग प्रॉफिट. आप पहले चीज ये बताओ कि उस सेक्टर में उस टाइम पे कौन सा दूसरा कंपनी था जो प्रॉफिटेबल था. सी अलक एंड प्रतीक का कॉम्बिनेशन जो है ना, इट्स अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन.
क्या है प्रतीक एंड अलक का कॉम्बिनेशन?
यार इट्स वन, एक तो यार जमीन से जुड़े हुए इंसान है. अलक इज समवन हुज कनेक्टेड टू द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स स्वेयर बाय हिम. उसका एक अलग रुतबा, अलग जज्बा, एक अलग शिद्दत, एक अलग जुनून है जब वो बच्चों के साथ है. प्रतीक इज अ फैंटास्टिक बिजनेस पर्सन. उसको पता है कि यार धंधे का नुआंस कैसे होता है, उसको पता है किस हिसाब से कौन सा मैट्रिक्स काम करेगा, किस हिसाब से किस तरीके से धंधा बढ़ा सकते हैं. अब तुम सोचो, एक बंदे का क्रिएटिव माइंडसेट, एक बंदे का बिजनेस माइंडसेट को जब तुम कंबाइन करो, यू आर कंबाइनिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स. सो फॉर मी आई थिंक ए credit can't be given to only one person in a journey. It is always co-founders and the team. The team is also phenomenal. But for me, I think the biggest differentiator, bhai, is when you're so good at something, but you also know your intent is to ensure that education is distributed and granted in the cheapest form possible for those people, taking into consideration ki bhai kal ke date pe dhanda bhi banana hai. As against ki aap aise dhanda bana rahe ho jahan pe aap sirf investor ka paisa jala rahe ho. So I think जो आपने बोला कि इन्वेस्टर ने क्या देखा, आई थिंक इन्वेस्टर ने तीन चीज देखा उनके लिए, द फाउंडर केमिस्ट्री, द फाउंडर माइंडसेट एंड द पोटेंशियल. पोटेंशियल विच इज जेन्युइन, पोटेंशियल विच इज नॉट ऑन अ बिजनेस प्लान. सो रियल रियल टाइम, रियल टाइम बेसिस. तो आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट दोज एस्पेक्ट्स क्रिएट दिस काइंड ऑफ डिसरप्टर्स.
लेट्स पिक अप ऑन शुगर, शुगर कॉस्मेटिक्स एंड विनीता आपके वन ऑफ द क्लोजेस्ट क्लाइंट्स रह चुके हैं, राइट?
एंड कौशिक,
कौशिक विनीता एंड कौशिक, बोथ ऑफ देम आपके साथ क्लाइंट्स हैं बहुत टाइम से,
एंड अमेजिंग पीपल.
उनके बारे में क्या खासियत है, व्हाट डू यू थिंक शुगर कॉस्मेटिक्स का क्या डिफरेंट है? क्योंकि शुगर कॉस्मेटिक्स एक ऐसी कैटेगरी में है जो बहुत टफ है, मतलब ब्यूटी जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और वो ना प्रीमियम गेम खेल रहे हैं बहुत ज्यादा, दे आर इन द मार्केट राइट एट द नेक ऑफ जहाँ पे बहुत लार्ज बड़ी कंपनीज जहाँ पे कम्पीट करी, वो भी वो वहीं कम्पीट कर रहे हैं. शुगर इज वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनीज जिसने एक्चुअली लार्ज कंपनीज को डराया है कि भाई हम में पोटेंशियल है, हम बड़े बन सकते हैं. दैट्स द रियलिटी, राइट? मतलब उनमें दे हैव एक्चुअली मेड, उन्होंने नाम बना दिया इंडिया में कि
नो डाउट
क्या है कैसा है. दैट्स एंड इट्स एब्सोल्युटली बैंगर कि तुम कैसे एक बहुत एक्सट्रीमली कंपेटिटिव स्पेस में कर सकते हो, वो बहुत किलर है. तो उन्होंने क्या किया है आई डोंट नो, बट massive respect for them.
Yeah, massive. In fact, look at it this way, right? There was only Lakme, Maybelline and Revlon. Now think of the fourth brand, the only fourth brand that you'll recollect is Sugar. The biggest differentiator for both of them is to ask you what your question was. Unhone alag kya kiya? They had the audacity and the guts. Unme himmat thi alag sochne ke liye. Unme himmat thi alag type ke products launch karne ke liye. Unme himmat thi ek alag tarike se khel ko khelne ke liye. To be able to build a brand, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना भाई, अब ब्रांड जितना भी पंप इन कर दो बियॉन्ड अ पॉइंट वो नहीं बनेगा. प्रोडक्ट हैज टू प्ले विद द ब्रांड. एंड आई थिंक देयर यूएसपी इज एज को फाउंडर्स दे आर ब्रिलियंट इन देयर वर्टिकल्स, देयर डिविजन ऑफ रोल्स, देयर डिविजन ऑफ थिंग्स, दैट द वे दे बिल्ड इट आउट, द वे द ब्रांड एंड द प्रोडक्ट इज इंटीग्रेटेड टुगेदर, टू माई माइंड आई थिंक दे डू अ फैब जॉब अबाउट इट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ यू आस्क मी, in spite of all the recent recognition in terms of celebrityhood or whatever you may call it, I think heart of heart, if you see, they are so grounded people. Like aap socho to what extent their character must have been, and this is something which I personally know and they've spoken in several occasions as well, right? For an investor to put in their personal money when the fund investment was not possible anymore, to say ki ja ke ye paise le, loan de rahe, ja ke wo maal khareed ke bech. Imagine the character that they would have shown in front of the investors to have that trust and faith. So there was a situation in their journey when they did not have the money to procure an MOQ order.
Wait, kya? Okay, explain. Aram, wapis mein samjhao.
So ek situation tha, and they have spoken about it publicly, therefore I can speak about it.
Kya that situation thi?
They did not have enough money to give as minimum payment for ordering a quantity of saman which was supposed to come.
Matlab Vinita, Sugar Cosmetics and Kaushik ke paas paise nahi the.
That time it was
minimum order quantity
in the early stages of their journey. India Quotient went ahead and put the founders or the partners of India Quotient loaned them personal money out of their own funds as partners funds, saying ki go get that order. और वहां से द ट्रेजेक्ट्री इज जस्ट सीन अ क्रेजी कर्व. बट फॉरगेट दैट, थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फॉर इन्वेस्टर्स टू टर्न अराउंड टेक अ पर्सनल कॉल ऑन फाउंडर्स, व्हाट डज दैट शो? दैट शोज द कैरेक्टर ऑफ द फाउंडर्स. दैट शोज कि वो फाउंडर माइंडसेट किस लेवल का है, किस तरीके से चीजें बन सकता है, किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो. सो व्हेन यू आस्क मी व्हाट इज द स्पेशलिटी और द डिफरेंशिएटर फॉर देम, अगेन इट कम्स डाउन टू फाउंडर माइंडसेट ब्रो. The more time you spend with them, and you know them personally as well, the more time you spend with them, you'll realize that these kind of people are super achievers. These kind of people are out of the ordinary achievers. But in spite of that, they are grounded, they are real. And realism is what matters.
Ek ek quality batao. Vinita from Sugar Cosmetics ki kya quality hai? Sabse best. And Kaushik from Sugar Cosmetics, uski sabse best quality hai.
Very difficult, yeah.
What if out of 10,000 qualities, सबसे अच्छी आपको क्या लगती है या एक हाईलाइट कर दो?
I think for Vinita, the biggest quality that I like about her is her spirit in life of never say die, never give up, constantly endeavor, along with the grounded humility. So for me, I really like that about her. Kaushik, of course, is a bro, yeah. So I like everything about him. But I think he has a fantastic mindset. His analytical skill sets are amazing. His problem-solving outlook is amazing. He always looks at the... And every time I've seen, when even if chips are down, he will only look at the absolute optimistic element around it. So his overt optimism, which again, as I founders, I think we all have to be eternally optimist. Otherwise, we can't survive. Hum bach nahi sakte jab tak hamara mindset mein nahi hai ki har cheez hum kar sakte hai, phod sakte hai, kisi na kisi aage badh sakte hai. So I think that eternal optimism mindset jo uska hai, I love that bit about him also. And he is, again, a very helpful person. If you reach out to him, I know so many people who've reached out. He will never say no in terms of trying to help, in terms of advice, mindset, space, kuch bhi bol lo.
One interesting company, this is the last company I want to talk about, and then I'll move to another section, is Plix.
The darling of the D2C space currently.
Yes. Kya kiya aisa unhone, which...
Yaar to...
one of the biggest exits. Okay, so give you background. Plix एक कंपनी है जिसको मैरिको ने रिसेंटली एक्वायर किया है. मैरिको जो पैराशूट ऑयल बनाते हैं, उन्होंने एक डी टू सी कंपनी Plix जो है उसको एक्वायर किया. एट कितनी वैल्यूएशन?
अबव 500.
500 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन पे उस कंपनी को खरीदा. ये इंडियन डी टू सी में आई थिंक सबसे बड़ा एग्जिट है कैरेटलिन के बाद. कैरेटलिन इज ब्यूटी. मतलब ये मान लो कि अपन सबसे बड़ा एग्जिट अभी इंडिया को स्टार्टअप वर्ल्ड में Plix का मिला है 500 करोड़ से ऊपर.
Right. As per public knowledge.
As per public.
I will only go with that.
Okay. Sorry, sir.
यहाँ पे थोड़ा सा lawyer में add करना पड़ेगा.
As per public knowledge. तो Plix ने क्या, Plix की स्टोरी बताओ मुझे कि क्या था, क्या उन्होंने ऐसा बनाया जो मैरिको को लगा कि यार हम नहीं बना सकते, 500 करोड़ दे दो, ज्यादा सस्ता लग रहा है. Because that's essentially the idea, right? कोई भी एक बड़ा प्लेयर, वो कोई एक छोटे प्लेयर को क्यों खरीदता है? उसे लगता है कि मैं अगर बनाने जाऊंगा तो मुझे 500 करोड़ से ज्यादा पैसा लगेगा इसको बनाने में. इससे बेटर कि इसी को 500 करोड़ में खरीद लेता हूँ.
सी, आई थिंक इसमें ना, इट्स ऑब्वियसली आकाश एंड ऋषभ कैन स्पीक मच बेटर ऑन दिस अगर आप उनसे बात करो. बट मेरे हिसाब से व्हाट आई सॉ, द यूएसपी वॉज द कंज्यूमर कैच, द कंज्यूमर पुल, द कंज्यूमर लॉयल्टी. The fact that suddenly I realized during the deal, it was so funny कि during the deal मुझे पता चला कि मेरे ऑफिस में 10 लोग हैं जो Plix के कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, एंड दे वर सुपर एक्साइटेड सडनली टू रियलाइज दैट वी आर डूइंग द Plix ट्रांजेक्शन. सो फॉर मी आई रियलाइज दैट इनहेरेंटली उनका बिजनेस में द कंज्यूमर पुल एंड द लॉयल्टी इज वेरी हाई.
Okay.
इनहेरेंटली इट्स अ बिजनेस विच इज ग्रोइंग, इनहेरेंटली बिजनेस विच इज प्रॉफिटेबल. आई थिंक a lot of these would be attraction points for a large player at the size of what, you know, the acquirer is, to get reasons to say that this is what would make sense as an acquisition. Coming back to, again, more than just the business, I think also they really loved the way the founders were building the business, the way the mindset of the founders were. They were very frugal, right? In terms of their mindset, they were very frugal. They were very, very frugal in terms of CAC, in terms of cost, in terms of allocation. The whole thought process ki agar main 1 rupaya kharcha karunga aur main usme se 5 rupaye ka worth nikalunga. That mindset of frugality is also very important. And I think they did a brilliant, brilliant job there. And as a result, the investors also got some phenomenal returns. I can't give out multiples, but far higher than what normal market multiples would be.
कहाँ पर founders की लग जाती है?
मतलब शुरुआत साल तक.
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं थोड़ा क्लियर करता हूं ज्यादा कि इन्वेस्टर्स कैसे फंसा सकते हैं किसी एंटरप्रेन्योर को, क्या क्या एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना चाहिए एट द टाइम कि मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं स्पेशली इंडिया में, लोगों को ध्यान रखना चाहिए.
इन्वेस्टर्स शुड नॉट टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब ये बहुत गहराई वाला पॉइंट है, बट आप देखोगे खुद, फाउंडर जब शुरू करते हैं मेजोरिटी होल्डर फाउंडर होता है. ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम जितना फाउंडर कैपिटल रेस करता जाएगा, जितना लिक्विडिटी आता जाएगा, फाउंडर का स्किन इन द गेम घटता जाता है.
Yep.
एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा राज वेयर द फाउंडर इज अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, खुद के ही कंपनी में वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो जाएगा. सडनली देखोगे इन्वेस्टर्स आर मेजोरिटी शेयर होल्डर्स. बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि द मोमेंट द फाउंडर इज माइनॉरिटी ही शुड हैव फाउंडर एफर्मेटिव वोट आइटम्स, फाउंडर माइनॉरिटी प्रोटेक्शन आइटम्स, फाउंडर के हिसाब से क्या हो सकता है, बिकॉज द डे अ फाउंडर इज लेस देन 25% भाई वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी ब्लॉक नहीं कर सकता. सो कल रिमेनिंग इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड एंड सेल द कंपनी, रिमेनिंग इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड टू रेज कैपिटल, पुट इन मोर मनी, डाइल्यूट द फाउंडर, बिकॉज दो सिचुएशंस दे कैन ओनली टेक जब धंधा सही तरीके से नहीं जा रहा है. मोस्ट पीपल बोलेगा फाउंडर ही चला रहा है, चाबी तो उसके पास है, इन्वेस्टर क्यों करेगा. व्हाई यू आस्किंग दिस, यू आस्किंग दिस कि फाउंडर की कब लग गई है, विच मीन्स इट्स नॉट द बेस्ट केस सिचुएशन, इट इज अ वर्स्ट केस सिचुएशन. सो उस सिचुएशन में दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैटर कि आपके फाउंडर के माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है कि नहीं, फाउंडर के परमिशन के बिना पे एक्स वाई जेड नहीं हो सकता, कैपिटल रेज नहीं हो सकता, कंपनी बेचा नहीं जा सकता, मर्जर नहीं हो सकता, किसी और के साथ कंसोलिडेशन नहीं किया जा सकता, वो सारे चीज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए. तो ये अगर हम जाएंगे, एज आई सेड, लगने के लिए तो बहुत जगह लगने के लिए है, बट मोटा मोटा फाउंडर को तीन चीज प्रोटेक्ट करना चाहिए. खुद का पर्सनल लायबिलिटी बाहर रखो, इंश्योर करो कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा लिक्विडेशन प्रेफरेंस मैथ ऐसा हो कि जितना बंदे ने पैसा डाला है उतना ही वो लेके जाए, उससे ज्यादा ना लेके जाए क्योंकि तुम्हारे पॉकेट से जाएगा. तीसरा, कंपनी का कंट्रोल तुम्हारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए जब तक तुम नहीं अग्री कर रहे हो बेचने के लिए किसी के साथ, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस दैट यू आर बिल्डिंग. इन्वेस्टर एक बिजनेस रिस्क ले रहा है. जब तक आप सही तरीके से चीजें करके धंधा व्हाटएवर रीजन नहीं बना पाए, यू शुड नॉट बी पिनलाइज्ड ओवर एंड अबव व्हाट द नॉर्म इज.
इंटरेस्टिंग. इंडिया में लॉ की रियलिटी है. सब बहुत बड़ा एक होक्स है क्या, लॉयर बनना है, लॉयर बनना है, लॉयर बन के ये होगा वो होगा. सूट्स लोग देखते हैं, हार्वी स्पेक्टर वाली जिंदगी होगी, क्या बढ़िया चलेगी जिंदगी, राइट. एक मेरे को एक मिथ बस करो, एक एवरेज लॉयर इंडिया में कितना कमाता है.
डिपेंड करता है कौन सा प्रैक्टिस हो लॉ में,
कोई भी, मतलब एक एवरेज मान लो ओवरऑल लॉयर, मतलब क्योंकि ओके तो अलग अलग लॉयर्स कितने, तीन टाइप के लॉयर मेजरली होते हैं.
हाँ, मतलब मैं थोड़ा ब्रॉड बेस,
हाँ ब्रॉड बेस बताओ कितने टाइप के लॉयर. कॉर्पोरेट लॉयर,
कॉर्पोरेट लॉयर
जो आप जिसमें आते हो एक.
हाँ, मतलब मैं ट्रांजिशनड कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, ओरिजिनली मैं लिटिगेटर था.
हाँ ओके,
ठीक है. लिटिगेशन,
लिटिगेशन इज
कोर्ट प्रैक्टिस, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो वाला हो गया आपका. तीसरा हो गया थोड़ा रेगुलेटरी लॉयर, कि भाई वो रेगुलेटरी सर्विसेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, जनरली आपसे भी बोल लो, कोई और रेगुलेटरी बोल रहे हो, वो हो गया. और चौथा बोल रहे हो कि भाई एक बहुत स्पेशलाइज्ड कोई लॉयर हो, मतलब बहुत ही नीश प्रैक्टिस में हो जा रहा है, कंपटीशन लॉ में चला गया या वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ शिपिंग और मैरिटाइम.
एक मैंने एक सुना था लॉयर एक है यूएस में, बताओ कि वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए लॉयर है,
मेडिकल नेग्लिजेंस,
मेडिकल नेग्लिजेंस लॉयर, कि किसी डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया तो डॉक्टर को बचाता है,
उसका वो स्पेशलाइज्ड फील्ड है,
वो बहुत पैसे कमाते हैं. दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट लॉयर्स इन न्यूयॉर्क.
एब्सोल्युटली. सो अभी थोड़ा सा हम इसको ये ब्रॉड बेस करते हैं भाई. द लॉ इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली इज अ डोमेन वेयर इट्स लाइक डायनेस्टी. मतलब अगर आप लिटिगेशन में देखोगे, जनरली मोस्टली सीनियर काउंसिल्स जो है बहुत सालों से वो सीनियर काउंसिल्स है, वो सीनियर काउंसिल्स चलते रहते हैं. तो उसमें जेस्टेशन पीरियड आपका बहुत लंबा है. उसमें बंदा जब शुरू करता है सैलरी बहुत कम होता है, आज के डेट में भी कम है. मैं जब शुरू किया था मैंने 1500 रुपये पगार से शुरू किया था, और उसमें भी एक बहुत बड़ा था कि तेरे को पैसे मिल रहे हैं, मतलब द फैक्ट दैट यू गेटिंग पेड इन लिटिगेशन वॉज अ बिग थिंग. कॉर्पोरेट लॉ थोड़ा बेहतर हो गया. कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप देखोगे, बड़े लॉ फर्म्स को छोड़ दो, बिकॉज उनके पास भी जनरेशन बेनिफिट है कि भाई वो तीन जनरेशन, चार जनरेशन, 100-125 साल से चले जा रहे हैं वो लोग, तो उसके पास डीप पॉकेट्स. बट कॉर्पोरेट लॉ एट एन एवरेज इज गोइंग टू बी फार बेटर देन लिटिगेशन इन द इमीडिएट फोरम ऑफ पेइंग. अब आप माइंडसेट के हिसाब से
कितने रुपए मिलते हैं लॉयर
यार, पकड़ लो शुरुआत अगर आप करोगे, बेसिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई आप 50,000-60,000 रुपये महीने से शुरू करोगे, विच इज नॉट बैड एट ऑल, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग एंड द कर्व ग्रोज ऑन. नाउ फॉर समवन फ्रॉम 50,000 रुपीज टू गो अप टू 5 lakh rupees इज अ जर्नी विच कैन गेट कंप्लीटेड, चाहे वो 4 साल में हो चाहे वो 8 साल में हो, डिपेंडिंग ऑन उसका खुद का क्या ग्रोथ है.
ओके. और अच्छा, टॉप लॉयर कितना कमाता होगा इंडिया में, कॉर्पोरेट लॉयर.
यार टॉप लॉयर टू रीच लाइक, मतलब स्टार्टिंग में अगर आप बोलोगे, स्टार्टिंग में मतलब टॉप फर्म्स में एटलीस्ट अभी का तो रेट के हिसाब से अगर आप देखोगे, बैंड्स जो होते हैं वुड बी अबाउट मे बी 1 lakh, 1 lakh 25 टू स्टार्ट विथ.
ओके. एंड जो अपनी जो स्टार बन जाते हैं 10-12-15 साल करने के बाद, उनका क्या पोटेंशियल होता है
यार? काफ़ी होता है,
तो भी अंदाजा
वो थॉट प्रोसेस
5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख पर मंथ की 1 करोड़ पर मंथ
नहीं 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 उतना तो नहीं होता ये बट इफ यू आर अ स्टार परफॉर्मर अगेन यू कैन मतलब वो थोड़ा डेफिनेशन स्टार का बहुत डिसेप्टिव है कि बट आप सिर्फ पहले अगर देख रहे हो तो मतलब आज से 8 साल पहले जब मैं छोड़ के अपना खुद का धंधा शुरू किया था आई वॉज ड्रॉइंग एन 8 फिगर सैलरी सो आप पकड़ सकते हो कि भाई 8 साल पहले अगर 8 फिगर कर रहा था वो 8 फिगर में ही कहीं ना कहीं होगा तो बट यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ लेवल दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस लिटिगेशन में यू कैन गो अप टू इवन बेटर इवन बिगर डिपेंडिंग कि आप वो सीनियर काउंसिल लेवल पर पहुंच गए कि नहीं
और लाइफ कितनी हार्वी स्पेक्टर टाइप होती है इधर
कुछ भी नहीं होती
कोई बड़े सिर्फ ऑफिसेज नहीं होते आपके मैनहट्टन जैसे पेंटहाउसेज ऑफिसेज नहीं है डर्बन पॉइंट में
होते हैं बट अगेन अगर आप अगर सपोज करो यू आर द ग्रैंडसन हु इज डूइंग द बिजनेस तो भाई आप कहीं पे भी ऑफिस ले सकते
अच्छा,
हो
तो आप अगर
मेरे जैसे
इंस्पेक्टर लिट के नाम से आए हो
तो वैसे हो सकता है मेरे जैसे अगर आप नॉन लॉयर बैकग्राउंड जमीन से आते हो तो हाँ अगर 400 स्क्वायर फीट का ऑफिस को आज हमने 7000 स्क्वायर फीट बना लिया है तो ठीक ही है यार वो भी अच्छा है बट स्काई इज द लिमिट इफ इन एनी बिजनेस नॉट जस्ट लॉ स्काई इज द यू नो लिमिट इन एनी बिजनेस लॉ में यू हैव टू बी पेशेंट
इतने फाउंडर्स से बात करते हो इतने सेक्टर्स में डील करते हो आपको क्या लगता है कि इंडिया में सब अब अगला बड़ा अपॉर्चुनिटी कौन से सेक्टर में
पर्सनली आई थिंक एग्री इज गोइंग टू बी वेरी बिग आई थिंक
जहाँ पे सब ये फाउंडर्स अगर देख रहे हैं और जो भी बिजनेस करना चाहता है जो भी जॉब में भी वो देखना चाह रहे हैं या किसी ऐसी कंपनी में वो जुड़े हैं जहाँ पे उनके पोटेंशियल बहुत स्कोप हाई होगा कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लगता है
आई थिंक एग्री रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सेक्टर्स है बहुत सारा काम हो सकता है उसमें एग्रीकल्चर इज द बैकबोन हमारे कंट्री का तो एग्री टेक रिलेटेड काम में बहुत कुछ हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोबिलिटी एंसिलरी बैटरीज जो है उसमें काफ़ी काम हो सकता है उसमें बहुत काम होगा आगे जाके बहुत सारा क्लाइमेट और डीप टेक लेके काम होगा नॉट ऑफ न्यू फंड्स आर कमिंग इन जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग एंड द लास्ट विच इज माई फेवरेट सेक्टर एंड आई लव द सेक्टर नॉट बिकॉज ऑफ द ग्लैमर आई लव द सेक्टर जस्ट बिकॉज इट्स सो टेंजिबल यू कैन फील एंड यू कैन सी क्या हो रहा है इज द कंज्यूमर सेक्टर एंड मेरे लिए आई थिंक इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता जाएगा इंडिया में एक प्राइड ऑफ मेड इन इंडिया बढ़ता जाएगा इंडिया में दैट थॉट प्रोसेस कि मुझे इंडियन चीज इंडियन फाउंडर का कुछ बनाया हुआ चीज़ चाहिए वो जो इमोशन है वो बढ़ता जाएगा सो आई थिंक कंज्यूमर तो यार अभी शुरू हुआ है मतलब बहुत कुछ होने वाला है कंज्यूमर में ओल्ड स्कूल कंज्यूमर D2C हाइब्रिड हाउस ऑफ ब्रांड्स 25 चीज आने वाले हैं 25 चीज एंड इट्स गोना बी वेरी बिग भाई बहुत बड़ा होने वाला है दैट्स व्हाट आई बिलीव
इंटरेस्टिंग कंज्यूमर बिजनेसेस आई एम ऑल अप फॉर इट
व्हाट अ प्लेजर मैन
थैंक यू फाइनली थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए हमें बताओ कि इस तरीके के और एपिसोड्स आपको देखने हैं कि नहीं देखने हैं ताकि हम आपके लिए बेहतर गेस्ट ला पाएं और उन गेस्ट से बेहतर क्वेश्चंस पूछ पाएं अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट एंड बिफोर यू गो यू नो दैट ये एपिसोड किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इस कॉन्वर्जेशन से एक पॉजिटिव चेंज आएगा थैंक यू सो मच